पृष्ठ संख्या 345 अध्याय 17 ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद हिस्टोरिकल पॉजिटिविज्म। रेवेलियन के अनुसार विज्ञान ने मानव जाति के सामाजिक आध्यात्मिक तथा आर्थिक एवं अंतरिक्ष संबंधी दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन करके शिक्षित समाज के मस्तिष्क को न केवल उत्प्रेरित तथा स्पंदित किया बल्कि अपने सामाजिक परिवेश में अनेक भ्रांतिमूलक समस्याओं के विषय में परिचर्चा के लिए विवश कर दिया। विज्ञान के आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने अर्ध शताब्दी पूर्व अनेक विद्वानों का समाज के अंतस्तल में प्रवेश कर अनेक भ्रांतियों के पर्दाफाश करने में प्रेरित तथा प्रोत्साहित कर दिया। यूरोप में पुनर्जागरण रिनेसेंस ने एक चेतना को जागृत किया। कोपरनिकस तथा गैलीलियो ने विज्ञान के जिस सुदृढ़ आधारशिला का शिलान्यास किया उसे भावी पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने अपने कठिन परिश्रम एवं अध्यवसाय से उस पर संगमरमर का सुंदर प्रासाद निर्मित करके प्राकृतिक रहस्यों का रहस्योद्घाटन किया जिसने मानव मस्तिष्क को एक नवीन चेतन तथा स्फूर्ति प्रदान किया। मुद्रण कला के विकास एवं नवीन देशों के अनुसंधान से ज्ञान की परिधि विस्तीर्ण हो गई। ज्ञान क्षितिज की विस्तीर्णता के परिणाम स्वरूप मध्यकालीन आदर्शों की निरस्ता तथा तपश्चर्या की शुष्कता का स्थान मानव जीवन की रागात्मक सरसता और उसकी बहुमुखी प्रगति का उल्लास इतिहास और संस्कृति को नई प्रेरणा और स्फूर्ति से अनुसंचित करने लगे। मैकियावेले, गैलीलियो एवं कोपरनिकस ने चिंतन गति को नवीन दिशा प्रदान की। लोरेजा बल्ला के डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन ने ऐतिहासिक लोरेजा बल्ला के डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन में ऐतिहासिक सामग्री का आलोचनात्मक अनुशीलन दृष्टिगोचर होता है। 1534 में प्रकाशित इटली के इतिहास में इटली के फड़कते हुए जीवन की ध्वनि मिलती है। प्रत्यक्षवाद का उद्भव एवं विकास ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिविज्म। वैज्ञानिक आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य प्रकृति समाज तथा अध्यात्म के उन रहस्यों का पर्दाफाश करना था जिसके परिणाम स्वरूप भ्रांतिमूलक प्रवृत्तियों का समाज एवं आध्यात्म के क्षेत्र में उद्भव तथा विकास हुआ। वैज्ञानिकों के सर्वाधिक आलोचनात्मक प्रहार का लक्ष्य दर्शन तथा इतिहास था। दर्शन का स्वरूप भाववादी तथा जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा परमात्मा तथा जगत के संबंध में अनेक दार्शनिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिकल्पनात्मक विवरण प्रस्तुत किए हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। वैज्ञानिक आंदोलन से प्रेरित एवं प्रोत्साहित अनेक दार्शनिकों ने इन भाववादी अवधारणाओं को यथावत स्वीकार करने के पहले ऐसे अनेक वैज्ञानिक प्रश्नों को उठाया जिनकी यथार्थता वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध की जा सके क्योंकि उपरोक्त दार्शनिक तथ्य गवेषणात्मक तथा निरीक्षणात्मक नहीं है अतः उसका प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। 1930 में वैज्ञानिक आंदोलन से प्रेरित दार्शनिकों ने वियना सर्किल संगोष्ठी के माध्यम से भाववादी दर्शन पर कठोर प्रहार किया। उनकी अवधारणा थी कि यदि वैज्ञानिक विधियों से परिकल्पनात्मक भाववादी दार्शनिक तत्वों का परीक्षण एवं निरीक्षण संभव नहीं है तो तर्क के आधार पर आत्मा परमात्मा जगत स्वर्ग नरक की यथार्थता का मूल्यांकन किया जाए। 1930 में कार्मेनेप तथा राइनबाक के संपादन में अर्केंटनीज नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। कुछ ही समय में उसका नाम बदलकर जर्नल ऑफ यूनिफाइड साइंस को हेक से प्रकाशित किया। भाववादी विचार को तार्किक भाववादी विचारधारा में प्रचलित किया। इस प्रकार 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भाववाद का स्थान तार्किक भाववाद ने ग्रहण किया। तार्किक भाववादी दर्शन के विवरण में एक कठिनाई है। यह एक वैचारिक गति है जिसका प्रारंभ एक वैचारिक आंदोलन के रूप में हुआ। सभी का संवेद स्वर सामान्य दृष्टि सामान्य लक्ष्य तथा सामान्य विधि तक है। इसके दो स्वरूप है, एक को यूरोपीय तार्किक भाववाद, दूसरा तार्किक अनुभववाद लॉजिकल इंपेरिसिस में, जिसके प्रवर्तक एजे एयर थे। इस विचार को तार्किक भाववाद तथा तार्किक अनुभववाद के अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुभववाद साइंटिफिक इंपेरिसिस्म की संज्ञा दी जा सकती है। परिणाम स्वरूप इसका स्वरूप तर्क के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। सामान्य रूप से दर्शन के क्षेत्र में प्रचलन भाववाद का ही है। केवल ब्रिटेन जैसे अनुभववादी परंपरा के एजे एयर जैसे विचारकों ने तार्किक अनुभववाद की संज्ञा दी है। इन विचारकों ने यथार्थता की पुष्टि के लिए तार्किक भाववाद, तार्किक अनुभववाद तथा वैज्ञानिक अनुभववाद के परिवेश में तार्किक विश्लेषण तथा तार्किक संरचना विधि का प्रयोग किया है। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए उन लोगों ने एक अर्थ सिद्धांत के नाम से प्रचलित किया। इन विचारकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यथार्थ ज्ञान विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। उनके अनुसार दर्शन का मूल कार्य विज्ञान के संदर्भ में निहित अस्पष्टता, अनेकार्थकता एवं सम्मिश्रण को दूर करना है। इस कार्य के लिए दार्शनिकों ने तार्किक भाषा विश्लेषण विधि को आवश्यक बताया। इस प्रकार 20वीं सदी के अनेक दार्शनिकों ने दर्शन के गूढ़ रहस्य की गवेषणा के लिए तार्किक तथा वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की आवश्यकता की उपाधेयता को अपरिहार्य माना है। अगस्त कांते फ्रांस के उन भाग्यशाली दार्शनिकों में से हैं जिन्हें 1789 की राज्य क्रांति की भूकंप जैसी सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक विभीषिकाओं के प्रभावों की अनुभूति का अवसर प्राप्त था। उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान कार्यकाल की गतिविधियों, सैनिक अभियानों तथा नेपोलियन के पराभव का दिग्दर्शन करने का भी अवसर प्राप्त। समाजशास्त्र एवं प्रत्यक्षवाद के जनक कांते का जन्म 19 जनवरी 1798 में मॉन्टपेलियर स्थान के एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। इनका वैवाहिक जीवन अत्यंत दुखद था। पास्कल, मॉन्टेस्क्यू तथा तुर्गो का प्रभाव उनके विचारों एवं कृतियों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। 1830 से 1842 के बीच कांते ने प्रत्यक्षवाद दर्शन की रचना करके प्रत्यक्षवादी दर्शन के जनक के रूप में अमर हो गए। कांते का प्रत्यक्षवादी दर्शन पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित था। उनका दृष्टिकोण कैथोलिक मिनस क्रिश्चियनिटी था। आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्होंने अभिभाषण देने की योजना बनाई तथा अपने प्रत्यक्षवाद की भूमिका तैयार की। उनके कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप 1830 में उनकी महान कृति द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ तथा शेष 5 भाग 1842 तक पूर्ण हुए। 1845 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने $1200 चंदा एकत्रित किया, जिसको स्वीकार करने में कांते को किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। कांते का प्रत्यक्षवाद। कांते को प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है। उनकी सभी अवधारणाएं प्रत्यक्षवादी सिद्धांत पर आधारित है। कांते के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक है। उनका अभिमत है कि समग्र ब्रह्मांड होल यूनिवर्स अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों इनवेरिएबल नेचुरल लॉज द्वारा नियंत्रित व्यवस्थित तथा निर्देशित होती है। और यदि हमें नियमों को समझना है तो तात्विक या धार्मिक आधारों द्वारा नहीं, क्योंकि विज्ञान की विधियों में कल्पना इमेजिनेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। इन्हें परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, इंस्पेक्शन, टेस्ट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली होती है। इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों द्वारा निष्कर्ष ही प्रत्यक्षवाद है। कांते का कथन है कि अनुभव, परीक्षण, निरीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण की सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा न केवल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन संभव है बल्कि समाज का भी, क्योंकि समाज प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, जैसे रात दिन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऋतु परिवर्तन, शीतकाल, ग्रीष्मकाल तथा वर्षा ऋतु आदि, उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं राज्यों की स्थापना, प्रसार, विकास, संगठन तथा पतन निश्चित नियमों के आधार पर घटती है। इब्न खल्दून ने इसका विश्लेषण अवयवी व्याख्या तथा अर्नाल्ड जे डैनवी ने संस्कृतियों का उत्थान तथा पतन की व्याख्या चुनौती तथा प्रत्युत्तर द्वारा किया है। कांते का प्रत्यक्षवाद का यही आधारभूत सिद्धांत है। प्रत्यक्षवाद का दूसरा सिद्धांत यह है कि कांते अपने को धार्मिक तथा तात्विक विचारों से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि इनका अध्ययन विधि साइंटिफिक मेथड से कदापि संभव नहीं था। कांते का प्रत्यक्षवाद कल्पना या ईश्वरीय महिमा के आधार पर नहीं, बल्कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। ब्रिजेस के एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यदि कोई व्यक्ति संख्या खा कर मर जाता है तो इस घटना की व्याख्या धर्मवादी, तत्वज्ञानी, वैज्ञानिक तथा प्रत्यक्षवादी अलग अलग ढंग से करेंगे, क्योंकि सभी का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। धर्मवादी उस व्यक्ति की मृत्यु को दैवीय विधान मानते हुए ईश्वर की इच्छा का परिणाम मानता है। तत्वज्ञानी यही कहेगा कि मिलन या अलगाव एक स्वाभाविक नियम है। मृत्यु एक ऐसा अंतिम विछोड़ है जिसमें विछोड़ के बाद मिलना संभव नहीं, परंतु इस मृत्यु के कारण की व्याख्या में एक वैज्ञानिक तथा डॉक्टर यही कहेगा कि व्यक्ति की मृत्यु संख्या खाने से हुई। डॉक्टर स्वयं जाकर उस व्यक्ति का निरीक्षण परीक्षण करेगा तथा संख्या के तत्वों का विश्लेषण करेगा। उस व्यक्ति पर संख्या के प्रभाव को देखकर मृत्यु के संबंध में अपना कोई मत प्रकट करेगा। अपने अध्ययन काल में प्रत्यक्षवादी अनुभव तथा प्रयोग को उत्तरोत्तर कार्य में लाते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्षवादी किसी निरपेक्ष विचार एब्सोल्यूट आइडिया को यथावत स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सामाजिक जीवन में परिवर्तन उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार प्राकृतिक जगत में। प्रत्यक्षवाद धर्म तथा तात्विक विचारों को दृढ़ता पूर्वक बहिष्कार तथा अस्वीकार करता है। इस प्रकार का विचार एक प्रकार की सत्यबाजी है। कांते का विश्वास है कि धार्मिक व तत्वाधिक अटकल पच्चू चिंतन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सत्य भी हो सकता है और काल्पनिक भी। अतः ऐसे निष्कर्षों का सत्य या काल्पनिक होना संयोग या अनुमान की बात हो सकता है, परंतु उनके सत्यापन का निर्णय यदि संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यह वैज्ञानिक चिंतन सहयोग या अनुमान पर कदापि संभव नहीं हो सकता। प्रत्यक्षवाद एक विचार प्रणाली है, इस कारण इसे यथार्थ होना चाहिए। यथार्थता के क्षेत्र में सत्यबाजी या अनुमान के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। इस प्रकार निरीक्षण, अवलोकन, प्रयोग तथा वर्गीकरण प्रत्यक्षवाद की आधारशिला है। प्रत्यक्षवाद तथा इतिहास। इतिहास अतीत में मनुष्य के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। विज्ञान के आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने मानव जाति के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर शिक्षित समाज के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं अंतरिक्ष संबंधित दृष्टिकोण में अत्यधिक परिवर्तन किया है। भौतिक जीवन के आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अनेक प्रख्यात इतिहासकारों के चिंतन को स्पंदित तथा उत्प्रेरित करके विचार विमर्श के लिए विवश कर दिया कि यदि अन्य विधियों का परित्याग करके इतिहास को वैज्ञानिक उपादानों से परिष्कृत किया जाए और उसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों तथा आदर्शों का क्रियान्वयन किया जाए तो निश्चित रूप से इतिहास की उपयोगिता एवं महत्व में वृद्धि होगी। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जर्मनी, फ्रांस, इटली के वैज्ञानिक इतिहासकारों के बीच गंभीर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ कि इतिहास को वैज्ञानिक उपादानों से परिष्कृत करने का उपयुक्त समय आ गया है। इंग्लैंड में सर्वप्रथम प्रोफेसर जेवी ब्यूरी ने 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सत्रारंभ के अवसर पर अपने अभिभाषण में कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस एंड नो मोर। इस महान इतिहासकार ने शक्तिशाली शब्दों में पुनः कहा कि जब तक इतिहास को कला मात्र स्वीकार किया जाएगा तब तक उसमें यथार्थता का, सूक्ष्मता का समावेश गंभीरता पूर्वक नहीं किया जा सकेगा। अनेक प्रख्यात इतिहासकारों ने इतिहास अध्ययन में यथार्थता की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग का प्रबल समर्थन किया है। कांते का प्रत्यक्षवाद पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है, जिसके अनुसार अतीत की पुनर्प्राप्ति प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के समुचित क्रियान्वयन द्वारा ही संभव है। कांते का प्रत्यक्षवाद ह्यूम, कांट, तुर्गो, गोंदर्से के प्रभाव का ही परिणाम है। यही नहीं, उनके प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू, सेंट पियरे तथा सेंट साइमन के विचारों ने भी सर्वाधिक प्रभावित किया है। एच एन बार्न्स ने उचित ही कहा है कि इन महान दार्शनिकों के उत्कृष्ट विचारों के अद्भुत समन्वय की क्षमता कांते में निराली एवं अद्वितीय थी। विज्ञान का संस्तरण गणित शास्त्र से आरंभ होता है। खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र से होता हुआ समाज शास्त्र तक समाप्त हो जाता है। इतिहास समाज शास्त्र की जननी है। कांते के प्रत्यक्षवाद से प्रभावित होना अपरिहार्य था। दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय एक विधा से है, जिसके माध्यम से आंकड़ों का वैज्ञानिक विधि से संकलन अनुभव के आधार पर किया जाए। इसमें धार्मिक विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुभव को गणित के समकक्ष स्वीकार करने को प्रत्यक्षवाद की संज्ञा दी है। इतिहास जगत में वैज्ञानिक तथा प्रत्यक्षवादी आंदोलनों का एकमात्र उद्देश्य अतीत का यथार्थ प्रस्तुतिकरण है। इसके लिए अनेक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक गवेषणा की आधुनिक विधाओं का प्रस्तुतिकरण किया है। इस परंपरा के शिलान्यासकर्ताओं ने बड़े परिश्रम से वैज्ञानिक विधाओं के आधार पर अतीत का अध्ययन कर ऐतिहासिक गवेषणा की सहायिका शिला तैयार की। वे वैज्ञानिक उपलब्धियों के सुखद परिणाम से अवगत थे। जर्मनी में नेबू तथा रांके, ब्रिटेन में ब्यूरी तथा एक्टन, अमेरिका में बियर तथा कार्ल बेकर और फ्रांस में टेने जैसे प्रख्यात इतिहासकारों ने विद्वता का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया। इन विद्वानों ने न केवल ऐतिहासिक गवेषणा की आधुनिक विधाओं का प्रतिपादन किया, बल्कि ऐतिहासिक अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली संबंधी सुदृढ़ आधारशिला का निर्माण किया। इन लोगों ने ऐतिहासिक स्रोतों को क्रमबद्ध करके त्रुटिपूर्ण स्रोतों की व्याख्या कर उनको विश्वसनीय स्वरूप प्रदान किया। इन विद्वानों का अभिप्राय त्रुटियों को दूर कर ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा अतीत का सुंदर प्रासाद प्रस्तुत करना था। यदि ऐतिहासिक गवेषणा की आधुनिक विधाएं 18वीं सदी की देन है, तो 19वीं तथा 20वीं सदी के विद्वानों ने ऐतिहासिक गवेषणा की विधाओं को परिपक्वता तथा प्रौढ़ता प्रदान की। बर्नहिम, लांगलर तथा सेनबास ने कठिन परिश्रम तथा गहन अध्यवसाय से इतिहास अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन तथा अतीत के गर्भ में अंतर्निहित तथ्यों का दिग्दर्शन कराया। इन विद्वानों के प्रयास के फलस्वरूप ऐतिहासिक गवेषणा की नवीन विधाएं स्वयमेव प्रस्फुटित हुई। परिणाम स्वरूप अतीत के कोणों में अंतर्निहित तथ्य प्रकाशित होकर इतिहासकारों के मस्तिष्क को स्पंदित तथा उद्वेलित किया। इस प्रकार यथार्थ तथ्यों का संकलन करके इतिहासकारों ने अपने अद्भुत कलात्मक शैली से बिखरे हुए तथ्यों को श्रृंखलाबद्ध कर एक रोचक, सजीव एवं सुंदर अतीत का चित्र प्रस्तुत किया है। इन विद्वानों के भगीरथ प्रयास ने ऐतिहासिक गवेषणा में विज्ञान तथा कला का मनोरम संगम स्थापित किया। रांके, आधुनिक इतिहास के कोलंबस तथा ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद के जनक थे। उनके चिंतन शक्ति को विज्ञान की उपलब्धियों तथा अनेक विचारकों द्वारा दार्शनिकों ने प्रभावित किया था। इस युग में मानव व्यवहार तथा सामाजिक परिवर्तन की अनुभूति ही विचारकों का चिंतन विषय बन गया था। स्रोतों पर आधारित इतिहास अध्ययन के अग्रणी एवं प्रबल समर्थक बार्थोल्ड जार्ज नेबूर ने रांके की वैज्ञानिक विधाओं की पृष्ठभूमि तैयार की। नेबूर का अनुकरण करते हुए उन्होंने ग्रंथालयों में बिखरे अनेक ऐतिहासिक स्रोतों को संपादित किया। उनके अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब ऐतिहासिक स्रोतों को समुचित रूप से संपादित करके शोधकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यदि भोजनालय में अच्छी सामग्री होती तो निश्चित रूप से स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार होगा। बर्लिन विश्वविद्यालय में इतिहास शोध की विधाओं की शिक्षा के लिए रांके ने अनेक संगोष्ठियों का आयोजन किया तथा इतिहास के शोध छात्रों को नवीन तकनीक से अवगत कराने का सराहनीय प्रयास किया। अल्प समय में ही उनके सिद्धांतों का प्रचार फ्रांस तथा ब्रिटेन तक हो गया। टांके ने एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर शोध छात्रों को ऐतिहासिक गवेषणा की नवीन विधाओं एवं तकनीक से अवगत कराने का यथाशक्य प्रशंसनीय प्रयास किया। सीजी क्रम्प के अनुसार ऐतिहासिक विधा के इतिहास में टांके का यह सर्वप्रथम प्रयास है, इसलिए इस महान इतिहासकार को आधुनिक इतिहास का कोलंबस तथा प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। इस प्रकार बर्थोल्ड जार्ज नेबू तथा टांके ने ऐतिहासिक गवेषणा की सुदृढ़ आधारशिला रखकर भावी पीढ़ी के शोधकर्ताओं के लिए वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत विधाओं का प्रतिपादन किया तथा प्रत्यक्षवाद की उपयोगिता को शोध में अपरिहार्य किया। 1859 में सर्वप्रथम ऐतिहासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। प्रकाशन कुछ प्रख्यात इतिहासकारों ने मिलकर किया। इस पत्रिका में इतिहासकारों ने ऐतिहासिक गवेषणा में वैज्ञानिक विधा संबंधी अनेक लेख लिखे थे। अल्प समय में संपूर्ण पाश्चात्य जगत इस वैज्ञानिक विधा से प्रभावित हो गया। आधुनिक इतिहास अध्ययन एवं लेखन का एकमात्र श्रेय नेबू तथा टांके को है। मार्विक ने टांके की प्रशंसा में लिखा है कि इतिहास अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में सर्वाधिक योगदान टांके का है। आधुनिक ऐतिहासिक गवेषणा विधा के शिलान्यासकर्ता को इस योगदान के लिए सर्वोच्च उपाधि से विभूषित करना चाहिए। ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताएं। प्रत्यक्षवाद का एकमात्र उद्देश्य अतीत का यथार्थ तथा यथावत प्रस्तुतिकरण है। इसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा प्रतिमान लेखन पैटर्न राइटिंग से अतिरंजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अतीत की गवेषणा अतीत की यथार्थता को प्रदूषित कर सकता है, इसलिए प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक इतिहासकारों ने कुछ वैज्ञानिक विधाओं का प्रतिपादन किया है जिसके माध्यम से अतीत का यथार्थ चित्रण संभव हो सकेगा। बाह्य आलोचना एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। हाकेट का अभिमत है कि ऐतिहासिक गवेषणा की दीक्षा के साथ शोधकर्ता में उच्च कोटि की चिंतन शक्ति अपरिहार्य है। शोध में बाह्य आलोचना का अभिप्राय पांडुलिपि पुस्तक अभिलेख तथा शिलालेखों की विश्वसनीयता को सिद्ध करना है, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोतों के मूल स्वरूप में परिवर्तन पाया गया है। कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने धनोपार्जन के उद्देश्य से ऐतिहासिक स्रोतों के मूल स्वरूप को परिवर्तित किया है। यहाँ तक कि मुगल कालीन चित्रों की प्रतिलिपियां बाजारों में बेची जाने लगी है। परिणाम स्वरूप इतिहास अध्ययन के क्षेत्र में चोर बाजारी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए इतिहासकारों ने मूल ग्रंथ के लेखक तथा उसके समय की विश्वसनीयता को सिद्ध करने की आवश्यकता का अनुभव किया। यूरोपीय इतिहास में मानसेन तथा भारतीय इतिहास में सर यदुनाथ सरकार का योगदान इस क्षेत्र में सराहनीय है। वर्तमान युग विशेष दक्षता का युग माना जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों की विश्वसनीयता की प्राप्ति शोध का आवश्यक अंग माना गया है। लेखक संबंधी ज्ञान नॉलेज ऑफ ओरिजिनल ऑथर कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के लेखक संदिग्ध होते हैं। बाइबल को लिपिबद्ध करने का श्रेय ईसाइया को है। प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक इतिहासकारों ने बाह्य आलोचना विधि से इस धार्मिक पुस्तक की गवेषणा की तो इसके मूल लेखक के विषय में संदेह होने लगा। बाइबल के प्रथम अध्याय में ईसा मसीह के समकालीन जूटा के शासकों का उल्लेख है, परंतु 45वें अध्याय में पर्सिया के शासक सीरस का वर्णन है। इस प्रकार प्रथम अध्याय के वर्णन तथा 45वें अध्याय की कथा वस्तु में 200 वर्ष का अंतर है। इस प्रकार किसी लेखक की 200 वर्ष की आयु असंभव है। ऐतिहासिक गवेषणा की आलोचनात्मक विधि से बाइबल की विवेचना के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस धार्मिक पुस्तक के तीन लेखक ईसाइया प्रथम, ईसाइया द्वितीय तथा ईसाइया तृतीय थे। इसी प्रकार की संदिग्धता अपुल फजल कृत अकबरनामा के विषय में भी है। अकबरनामा में 1526 से 1605 तक की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुदेला द्वारा 1601 से 2 में कर दी गई। अतः 1601 के बाद की घटनाओं का वर्णन किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है जिसका अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बालकांड से उत्तर कांड तक की है। बाद में लौकुश कांड किसी ने जोड़ दिया है। इसको लिखने वाला कौन है यह अभी तक अज्ञात है। ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता द्वारा बाह्य आलोचना एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की विधि से मूल लेखक का निश्चय करके विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करना चाहिए। सहायक ऐतिहासिक स्रोतों का प्रयोग, यूज ऑफ कंटेम्पररी सोर्सेस, वास्तविक लेखक का पता लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों के शासन काल की घटनाओं संबंधी स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। बाइबल के मूल लेखक ईसाया का काल 740 से 700 ईसा पूर्व था। तृतीय ईसाया इसके पश्चात आता है। इससे सिद्ध होता है कि बाइबल तीन लेखकों द्वारा लिखी गई है। ऐतिहासिक स्रोत का स्वर, टोन ऑफ ओरिजिनल सोर्सेस। बाह्य आलोचना का सर्वाधिक प्रयोग बाइबल के संबंध में किया जा सकता है, परंतु प्राचीन यहूदियों में आलोचना सिद्धांत संबंधी अवधारणा का स्पष्ट अभाव था। यहूदियों द्वारा वर्णित घटनाओं में विपरीत स्वर का आभास होता है। बदायूनी अकबर का समकालीन था। अबुल फजल तथा बदायूनी के इतिहास में परस्पर विरोधी स्वर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। रोमन इतिहासकार टेसिटस ने अगस्टन वंश के शासकों की कटु आलोचना की है। फ्रांसीसी इतिहासकार टेन ने लिखा है कि ऐसी पुस्तकों को देखने के पश्चात शोधकर्ता स्वतः इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि पुस्तक का क्या स्वर तथा तथ्य है। यदि हेरोडोटस से टैनबी तक इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाए तो विभिन्न स्वरों के अनेक उदाहरण मिलेंगे। गुमनाम लेख, एनोनिमस राइटिंग, छाया मात्र लेखक, घोस्ट राइटिंग, संस्मरणात्मक जीवनी तथा आत्मकथा, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर्स, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, जालसाजी की गवेषणा तथा साहित्यिक चोरी, फोर्जरी एंड प्लेजरिज्म, आंतरिक अथवा उच्च स्तरीय आलोचना, इंटरनल और हायर क्रिटिसिज्म। बाह्य आलोचना द्वारा शोधकर्ता ऐतिहासिक स्रोत तथा लेखक विश्वसनीयता को सिद्ध करता है। इसके पश्चात वह लेखक के कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण आलोचनात्मक विधि से करता है। लेखक का कथन ही ऐतिहासिक तथ्य होते हैं। यदि इसका स्वरूप उच्च कोटि का नहीं है तो इतिहासकार का रचनात्मक कार्य निम्न कोटि का होगा। तथ्य ही इतिहासकार का कच्चा माल, ईंट, सीमेंट, लोहे के क्षण, पत्थर, संगमरमर के टुकड़े की भांति होते हैं। इसके शुद्धता से अच्छे भवन का निर्माण होता है। आधुनिक शोधकर्ता का प्रमुख उद्देश्य विश्वविख्यात ताजमहल जैसी कृति का निर्माण करना चाहता है। हेरोडोटस की इतिहास रचना का आधार ऐतिहासिक शोध पांडुलिपियां नहीं अपितु स्थान स्थान पर जनमानस द्वारा गाई जाने वाली गीत मालाएं थी। अतः उन्होंने इन्हीं गीतों तथा व्यक्तियों के संस्मरणों के आधार पर अपने इतिहास की रचना की। इसी प्रकार राजस्थान के राजाओं के दरबार चारण राजाओं की प्रशंसा में गीत की रचना करते थे। उन्हें लिपिबद्ध किया गया। इस प्रकार वर्णित तथ्यों की यथार्थता संदिग्ध है, क्योंकि इनमें अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा का संग्रह है। कर्नल जेम्स स्टार्ट ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में अनेक स्थानों पर किंवदंतियों का उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ यह सत्य है कि तराई के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, परंतु चारण उसका विपरीत वर्णन देता है। इसकी कोई ऐतिहासिकता नहीं है। आंतरिक आलोचना, इंटरनल क्रिटिसिज्म की विधियां पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होती है। अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित तथ्य द्वेष तथा पक्षपातपूर्ण होते हैं। प्रत्यक्षवादी इतिहासकार हिस्टोरियंस वैज्ञानिक विधाओं से इन तथ्यों का परीक्षण करके यथार्थ की गवेषणा तथा प्रस्तुतिकरण करता है। बाणभट्ट तथा अबुल फजल की रचनाएं ऐसे उद्धरणों से भरी पड़ी हैं। ऐतिहासिक इतिहास भारतीय इतिहास में मानव जीवन की क्रमबद्ध घटनाएं मानव जीवन की युगपरक व्यवस्था के अधीन है। हिंदुओं में जीवन चरितात्मक इतिहास का प्रचलन हुआ। पुराणों में राम, रावण, मंधाता, भगीरथ, सागर, ककुस्थ, युधिष्ठिर, अर्जुन, कार्तवीर्य आदि महापुरुषों के अस्तित्व को भी संदेहास्पद माना गया और यहाँ तक कहा गया है कि हम नहीं कह सकते कि वे कभी हुए थे अथवा नहीं। कुछ एक इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने इस प्रवृत्ति के अपवाद स्वरूप वैज्ञानिक दृष्टि इतिहास का अध्ययन किया। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो कथानकों किंवदंतियों से भरे पड़े हैं, जिनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इन ग्रंथों में फोर्ब्स की रचना, रसमाला, गंगाधरकृत, गंगादास एवं प्रताप विलास तथा मंडलीक महाकाव्य तथा अन्य प्रबंध काव्य यद्यपि ऐतिहासिक रचनाएं हैं, परंतु लेखकों ने कल्पना के उड़ान में ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा की है और इनकी पुष्टि अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से करना असंभव है। इसी प्रकार मुहुनोत्तनयनसी की ख्यात तथा हमीर महाकाव्य में कथानकों एवं किंवदंतियों की भरमार है। चित्तौड़ के किले में कीर्ति स्तंभ पर अंकित श्लोक वास्तविक घटना के विपरीत वर्णन प्रस्तुत करता है। अटारी शिलालेख में महमूद शाह के विजय को पराजय दिखाया गया है। प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक इतिहासकार ऐसे तथ्यों को यथावत स्वीकार न करके गवेषणात्मक आलोचनात्मक विधा द्वारा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से पुष्टि करने का प्रयास करते हैं। बाड़भट्ट तथा अबुल फजल की ऐतिहासिक रचनाएं अत्यधिक अतिशयोक्ति पूर्ण है। सकारात्मक आलोचना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, सकारात्मक आलोचना द्वारा यथार्थता की गवेषणा के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है। दार्शनिकों ने भी प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के आधार पर वाक्य विन्यास की विधा को सार्थक बताया है। दार्शनिक कार्नेप अर्थ निर्धारण का विश्लेषण करते हुए पुनः परीक्षणीयता वेरिफिकेशन अथवा सत्यापन की आवश्यकता को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि उसके आधार पर कुछ ऐसे निरीक्षणीय वाक्य ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस अथवा स्वभावमूलक वाक्य प्रोटोकॉल सेंटेंस स्टेटमेंट्स की स्वभावमूलक वाक्य प्रोटोकॉल स्टेटमेंट्स ही सत्यापन के आधार होते हैं। प्रायः ऐतिहासिक स्रोतों के मूल लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति ऐसे वाक्यों के माध्यम से करते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ से भिन्न होता है। जब शेक्सपियर के जूलियस सीजर में मार्क एंटोनी ने ब्रूटस को माननीय शब्द से संबोधित किया तो उसका अभिप्राय व्यंग्यात्मक था। एंटोनी का अभिप्राय प्रतिष्ठा सूचक नहीं अपितु निंदा सूचक रहा है। इसी प्रकार मैकबेथ के गंभीर अपराध के लिए शेक्सपियर ने लिखा है कि अरेबिया के सभी सुगंधित तत्व उसके छोटे हाथ को मधुयुक्त नहीं बना सकते। प्रायः मूल लेखक अपने युग की भाषा रीति रिवाज के अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। उदाहरणार्थ विजडम क्रीथ इन द स्ट्रीट, गली में बुद्धि का रोना, इसका अभिप्राय यह है कि निरंकुश तानाशाह शासक द्वारा अनुभवी बुद्धिमान सलाहकारों के सलाह की उपेक्षा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब विश्व विजय तथा अन्य प्रशासनिक सुधारों के संबंध में परामर्श किया तो दिल्ली के कोतवाल काजी मुगीसुद्दीन के सुझाव को मानकर विश्व विजय की योजना का परित्याग कर दिया, परंतु प्रशासनिक सुधार संबंधी उलेमाओं के सुझाव को अस्वीकार करते हुए कहा है, मैं नहीं जानता कि मेरा कार्य विधि सम्मत है अथवा विधि विपरीत। मैं वही करूंगा जो प्रजा तथा राज्य के हित में होगा। कयामत के दिन अल्लाह मुझे क्या दंड देंगे, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। इसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 एक सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम था, परंतु प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी मात्र एक वाक्य में उल्लेख करता है, आकाश से उल्कापात अल्लाह सत्य को जानता है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अल्लाह नोज द ट्रुथ। मैकाले ने अपनी रचना हिस्ट्री की प्रथम भाग में लिखा है कि हॉलैंड के सम्राट विलियम तृतीय ने ब्रिटेन के लिए प्रस्थान करने की पूर्व संध्या पर देशवासियों से अंतिम विदाई के अवसर पर कहा था, इन ऑल दैट ग्रेव सीनेट देयर वॉज नन हु कुड रिफ्रेन फ्रॉम शेडिंग टीयर्स बट द आयरन स्टोइसिज्म ऑफ विलियम नेवर गेव वे एंड ही स्टूड अमंग हिज वीपिंग फ्रेंड्स क्लेम एंड ऑस्ट्रिया एज ही वॉज बीन अबाउट टू लीव टिम ओनली फॉर अ शॉर्ट विजिट टू हिज हंटिंग ग्राउंड एट लू। मैकाले के पास इस प्रकार के विवरण संबंधी कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत नहीं था। संभवतः मैकाले ने होरिस के ओट्स में वर्णित रेगुलस के सीनेट से विदाई के अवसर पर दिए हुए विदाई भाषण को यथावत उद्धृत कर दिया है। मैकाले ने यथार्थ तथ्य को दूसरे के संबंध में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार मध्ययुगीन चित्रों में बिस्तर पर लेटे हुए शासकों के सर पर मुकुट चित्रित किया गया है। इसका संकेत शासक को साधारण जन समूह से अलग दिखाना है। जब रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु जन्म से मृत्यु तक बंधन युक्त है, जब शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा गया तो इसका संकेत उनकी बहादुरी से था। इस प्रकार सकारात्मक आलोचना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का एकमात्र उद्देश्य मूल लेखक के कथनों से वास्तविक अर्थ की गवेषणा है। प्रायः मूल लेखक की व्यवस्था परिस्थिति जन्य होती है जिसके कारण वह अपनी अभिव्यक्ति को शब्द जाल से प्रस्तुत करता है। सकारात्मक आलोचना का संपूर्ण विश्लेषणात्मक होता है। सकारात्मक आलोचना का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है। शोधकर्ता का निष्कर्ष निश्चयात्मक होना चाहिए। आलोचना सिद्धांत के दीक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक कला है जिसके लिए शोधकर्ता की व्यक्तिगत प्रतिभा की आवश्यकता होती है। फिर भी सकारात्मक आलोचना विधा युक्त है। नकारात्मक आलोचना निगेटिव क्रिटिसिज्म प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक अवधारणा का एकमात्र अभिप्राय यथार्थ तथ्यों की गवेषणा है क्योंकि यही इतिहास लेखन की ईट सीमेंट क्षण होते हैं जिसके प्रयोग से इतिहासकार एक सुंदर प्रसाद का निर्माण करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शोधकर्ता प्रत्येक वाक्य को संदिग्ध दृष्टि से देखता है। दार्शनिक दिद्रो ने कहा है कि निरंतर प्रश्नों के माध्यम से ही यथार्थता का ज्ञान संभव है। मूल लेखक की संदिग्धता के कुछ आधारभूत कारण होते हैं। बाबरभट्ट अबुल फजल जियाउद्दीन बर्नी का कथन परिस्थिति जन्य है। बाबरभट्ट ने प्रभाकर वर्धन के विषय में लिखा है, हुड़ हरिण केसरी सिंधु राज्य ज्वरो गुर्जर प्रजागरो गांधाराधिप गंधद्वीप कुट पाकलो लाट पाटव पाटचरो प्रभाकर वर्धन नाम राजा सिराज है। प्रभाकर वर्धन की प्रशस्ति का एकमात्र कारण यह था कि उसे राज्याश्रय प्राप्त था। हसन निजामी ने जब भारत में प्रवेश किया तो उसने हिंदुओं के विषय में लिखा, कौओं जैसे हिंदू दौड़ने में गधों तथा हिरणों से भी आगे थे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के विषय में लिखता है कि उसकी आत्मा 8 स्वर्गों तथा 9 आसमानों को पार कर 10 फरिश्तों में जा मिली। इस प्रकार मोहम्मद गोरी की प्रशंसा करके दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों को प्रसन्न कर धनोपार्जन तथा राज्याश्रय प्राप्त करना चाहता था। इसी प्रकार मुगल कालीन इतिहासकार बदायूनी ने उन सभी की आलोचना की है जिनका दृष्टिकोण उदारवादी था। बदायूनी स्वयं एक कट्टर धर्मांध सुन्नी था। उसने शरीयत का विरोध करने वाले की वालों की आलोचना की है। इब्न बतूता ने अपने रेहला में किंवदंतियों का भी उल्लेख किया है। कुतुब मीनार की सीढ़ी इतनी चौड़ी थी कि हाथी भी चढ़ जाता था। एक विश्वास पात्र ने उससे कहा था कि उसने मीनार बनाते समय हाथियों पर पत्थर लादकर कुतुब मीनार पर चढ़ते हुए देखा था। इस प्रकार इन इतिहासकारों का कथन पूर्ण रूप में विश्वसनीय नहीं है। धर्म जाति के कारण भी इतिहासकारों के कथन को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा जाना चाहिए। औरंगजेब के संबंध में सरयदुनाथ सरकार तथा फारूकी का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से धर्म एवं जातिगत भावनाओं से प्रेरित है। गिबन कार्ल मार्क्स तथा टाइम भी विशेष दृष्टिकोण से अतीत का अवलोकन कर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार हिगल, क्रोचे तथा कॉलिंगवुड ने विशेष दृष्टिकोण से अतीत की व्याख्या की है। आधुनिक युग में प्रायोगिक मनोविज्ञान ने इतिहासकारों को गवेषणा की नवीनतम विधा प्रस्तुत की है। विशेष परिस्थिति में मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया का अनुमान लगाया जा सकता है। जॉनसन के अनुसार यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी न्यायालय में यह बयान दे कि उसने अंधेरे में एक व्यक्ति की लाल टोपी देखी परंतु नीले कोट को नहीं देख सका तो उसका बयान गलत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रायोगिक मनोविज्ञान विधा से यह सिद्ध किया जा गया है कि अंधेरे में लाल की अपेक्षा नीला रंग स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार शोधकर्ता के लिए मानसिक प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। अबुल फजल अकबर के शासनकाल की सभी घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था, परंतु उसने भी घटनाओं का यथार्थ उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि वह यथार्थ वर्णन द्वारा अकबर महान के चरित्र को कलंकित नहीं करना चाहता था। सम्राट अकबर की मुगल सेना ने खानदेश में असीरगढ़ किले पर विजय प्राप्त की। अबुल फजल घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। विजय के कारणों का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि महामारी के कारण विजय सरल हो गई, परंतु पुर्तगाली प्रत्यक्षदर्शी जेवियर ने लिखा है कि मुगल सेनापति ने किले के रक्षकों को घुस देकर किले का द्वार खुलवा दिया। मुगल सेना ने प्रवेश करके किले पर अधिकार कर लिया। नकारात्मक आलोचना विधि से शोधकर्ता को यह पता लगाना चाहिए कि किन परिस्थितियों के कारण प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार ने घटना की वास्तविकता को छुपाने का प्रयास किया है। जॉनसन ने कहा है कि शोधकर्ता को प्रत्यक्षदर्शी की भावुक तथा बौद्धिक क्षमता का परीक्षण किए बिना उसके विवरण को यथार्थ मानकर नहीं स्वीकार करना चाहिए। उसके द्वारा वर्णित तथ्यों की अन्य स्रोतों से पुष्टि करनी चाहिए। ब्रिटिश इतिहासकारों ने रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना है, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने उसे एक लुटेरे की संज्ञा दी है। इसी प्रकार ऐतिहासिक स्रोतों में अनेक अफवाहों, गॉसिप एंड र्यूमर्स तथा किंवदंतियों, लेजेंड एंड ट्रेडिशंस का विवरण मिलता है, जिसका प्रयोग प्रायः इतिहासकारों ने किया है। डॉक्टर एलपी पांडे के अनुसार समय परिवर्तन के साथ परिष्कृत परंपरा ने ऐतिहासिक तथ्य के रूप में मान्यता प्राप्त की है। साक्ष्य एविडेंस वैज्ञानिक विधा में आस्थावान इतिहासकारों ने साक्ष्यों की यथार्थता की पुष्टि के लिए अनेक विधाओं का प्रतिपादन किया है। इतिहासकार में कार्यकारण के संबंधों का भी स्पष्ट ज्ञान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक घटनाओं के स्पष्टीकरण तथा वस्तुनिष्ठा की विधा का ज्ञान शोधकर्ता के लिए अपरिहार्य। कांते के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के अनुसार अतीत का निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण तो संभव नहीं है। फिर यदि रांके तथा उनके अनुयायियों द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक विधा का प्रयोग अतीत की गवेषणा के लिए किया जाए तो निश्चित रूप से अतीत का यथार्थ प्रस्तुतिकरण संभव हो सकेगा। ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल पॉजिटिविज्म। अतीत का स्वरूप अत्यधिक गूढ़ तथा रहस्यवादी है। इतिहास के प्रति दार्शनिकों की अभिरुचि तथा आकर्षण का एकमात्र कारण अतीत की रहस्यवादिता रही है। यदि वैज्ञानिकों ने प्रकृति के तथ्यों के रहस्योद्घाटन का प्रयास किया तो दार्शनिकों एवं वैज्ञानिक विधा में आस्थावान प्रत्यक्षवादी इतिहासकारों ने अतीत के गर्भ में अंतर्निहित तथ्यों को प्रकाश में लाने का यथाशक्य प्रयास किया है। मानव ज्ञान के लिए अतीत की उपयोगिता असंदिग्ध है। देवी का अभिमत है कि अतीत पर कृपा न तो उसके लिए और न अतीत के लिए अपितु सुरक्षित एवं सुसंपन्न वर्तमान के लिए करते हैं कि वह सुखद भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। अतीत संबंधी ज्ञान की उपादेयता को सभी इतिहासकारों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। ओक्सर्ट ने इतिहास की उपादेयता के संबंध में कहा है कि व्यवहारिक अतीत के गर्व से वर्तमान का आविर्भाव हुआ है और यही मनुष्य के भविष्य का निर्णय करता रहेगा। इतिहासकारों द्वारा अतीत का अध्ययन वर्तमान को सुरक्षित करने तथा सुखद भविष्य के निर्माण के लिए किया गया है। कॉलिंगवुड ने भी इस विचार को मान्यता प्रदान किया है। जीपी गूच की अटूट आस्था इतिहास की उपयोगिता में रही है। अतीत संबंधी ज्ञान की उपादेयता को देखकर आधुनिक इतिहास के कोलंबस, रांके का, वार्थोल्ट, नेबूर ने प्रत्यक्षवादी अवधारणा के समर्थन तथा प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका विश्वास था कि यदि अतीत का यथावत प्रस्तुतिकरण किया जाए तो वह मानव समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी तथा कल्याणकारी होगा। कार्ल मार्क्स प्रत्यक्षवादी अवधारणा का प्रबल विरोधी एवं कटु आलोचक था। उसने कहा है कि प्रत्यक्षवाद एक अनुपयुक्त शब्द है। पॉजिटिविज्म इज एन ऑकवर्ड वर्ड। अतीत अध्ययन की उपादेयता में कार्ल मार्क्स की भी अटूट आस्था थी, परंतु रांके की प्रत्यक्षवादी अवधारणा के अनुसार अतीत के यथावत प्रस्तुतिकरण पर उसने कठोरतम प्रहार किया है। उसने कहा है कि प्रत्यक्षवादी अवधारणा के अनुसार अतीत के यथावत प्रस्तुतिकरण का अभिप्राय दास प्रथा, सामंतशाही व्यवस्था तथा कुलीन वर्ग द्वारा गरीब श्रमिकों के शोषण को मान्यता प्रदान करना होगा। इस पुरातन व्यवस्था के कारण गरीब श्रमिकों के असंख्य शवों पर इतिहास का निर्माण हुआ है। कांते को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। उसने जीवन भर अतीत की गवेषणा में वैज्ञानिक विधाओं के प्रयोग की अपरिहार्यता का समर्थन किया। उसने प्रत्यक्षवाद में धर्म तथा नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। यदि कांते ने अपने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों को स्थायित्व प्रदान किया होता तो निश्चित ही आधुनिक युग के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक विचारकों में एक गरिमामय स्थान अवश्य प्राप्त करता। मिल जैसे विचारक का मत है कि प्रत्यक्षवादी दर्शन कांते ने जिस वैज्ञानिक स्तर पर स्थापित किया उस पर वह स्वयं ही स्थिर नहीं रह सका। उसके प्रत्यक्षवादी दर्शन में धर्म तथा नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। अंत में वह धर्म तथा नैतिकता का पुजारी बन गया। इसलिए मार्विन ने कहा है कि प्रत्यक्षवाद का जनक स्वयं ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। कांते ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि प्रत्यक्षवाद वाद केवल एक विज्ञान ही नहीं अपितु मानव के लिए एक धर्म भी है। इसी प्रकार आधुनिक इतिहास जगत के कोलंबस रांके ने भी इतिहास गवेषणा में प्रत्यक्षवाद तथा वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की आवश्यकता को सिद्ध किया है। इसके लिए उन्होंने दीक्षा संस्थाओं को स्थापित किया तथा पत्रिकाओं के माध्यम से समस्त यूरोप में प्रचार तथा प्रसार का प्रशंसनीय प्रयास किया। अल्प समय में ही पाश्चात्य जगत के अनेक विद्वानों ने इतिहास अध्ययन में वैज्ञानिक विधाओं के नियोजन की अपरिहार्यता का समर्थन किया। इंग्लैंड में जेबी ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास विज्ञान है न कम और न अधिक। कांते की भांति रांके भी अपने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों पर अडिग नहीं रहा और अल्प समय में ही अपने ही सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी। मार्विन के अनुसार रांके वॉज नो कोल अनइमोशनल स्कॉलर, सो मच इज ही अ मैन ऑफ हिज टाइम दैट हिज स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव्स वेयर इनफैक्ट रिलीजियस ही सॉ दैट बिहाइंड ह्यूमन स्टोरी ले गॉड्स प्लान अबव ह्यूमन एक्टिविटीज गॉड्स हैंड स्टेट्स ही कॉल्ड थॉट्स ऑफ गॉड। रांके ने प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन की इतनी कमजोर आधारशिला रखी कि उसके जीवन काल में निम्न कोटि सामग्री से निर्मित इमारत स्वयं ध्वस्त होने लगी। उनके अनुयायियों के अथक प्रयास के बावजूद प्रत्यक्षवादी इमारत खंडहर बन गई। इंग्लैंड में थॉमस हेनरी बकल ने रांके स्कूल के खंडहर की मरम्मत करने के उद्देश्य से हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड की रचना की। जॉन टोस ने स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान की प्रगति में उनका प्रयास घातक सिद्ध हुआ। फ्रेंच इतिहास का फस्टल द कोलंज ने भी ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद की आलोचना की है। अमेरिकन इतिहासविद एडम स्कैफ ने रांके के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत की तुलना स्कूल के छोटे बच्चों के बीच शोरगुल तथा आपसी झगड़ों से किया है। प्रत्यक्षवाद तथा समसामयिक वाद, पॉजिटिविज्म एंड प्रेजेंटिज्म। दार्शनिक बेनोदोत ग्रोचे ने प्रत्यक्षवाद पर कठोर प्रहार किया है। उन्होंने इतिहास की विषय वस्तु के स्वरूप को मान्यता प्रदान की तथा वस्तुनिष्ठ लेखन की कटु आलोचना की है। इतिहास पर संस्कार, जाति, धर्म तथा सामाजिक परिवेश का प्रभाव अपरिहार्य है। वह कितना ही वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष क्यों न हो, वह अपने समसामयिक समाज का सदस्य होता है तथा अपनी रचना
समसामयिक रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत करता है। इसलिए क्रोचे ने जोरदार शब्दों में प्रत्यक्षवादी अवधारणा पर कठोर प्रहार करते हुए समसामयिकता को सभी इतिहास लेखन की विशेषता कहा है। कोई भी इतिहासकार अपने को बाह्य परिस्थितियों से मुक्त नहीं कर पाता है, वह वस्तुनिष्ठा के आवरण से अपने को ढकने का कितना ही प्रयास क्यों न करे। इसलिए इतिहासकार को अवांछित तथा निष्पक्ष इतिहास लेखन का प्रयास नहीं करना चाहिए। समसामयिक प्रभावों से इतिहास को मुक्त करने का अभिप्राय मृत अतीत का मृत प्रस्तुतिकरण होगा। क्रोचे के विचारों को बढ़ाने का एकमात्र श्रेय आरजी कॉलिंगवुड को है। उन्होंने सभी इतिहास को विचार का इतिहास कहा है। ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट। कॉलिंगवुड ने भी सामाजिक परिवर्तनों के परिवेश में विचारों तथा साक्ष्यों के परिवर्तन की अपरिहार्यता को स्वीकार किया है। सभी इतिहासकारों ने एक स्वर में समसामयिक रुचि एवं आवश्यकता अनुसार इतिहास लेखन की आवश्यकता को अनुभव किया है। इतिहासकार अपने समसामयिक समाज का सदस्य ही नहीं अपितु साहित्यकार की भांति समाज का प्रतिनिधि होता है। उसकी वाणी युग की पुकार होती है। युग की वाणी की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति सफल इतिहासकार नहीं होते। प्रत्यक्षवादी इतिहासकार रांके तथा उनके अनुयायियों ने अतीत के यथावत प्रस्तुतिकरण संबंधी स्वप्नलोकीय कल्पना की है, परंतु एफ एच ब्रैडले ने इस स्वप्नलोकीय कल्पना की कटु आलोचना करते हुए कहा है कि वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों के परिवेश में अतीत के प्रस्तुतिकरण के स्वरूप में परिवर्तन स्वाभाविक एवं अपरिहार्य है। द पास्ट चेंजेस टूगेदर विद द प्रेजेंट एंड दिस कैन नेवर बी डिफरेंट सिंस इट हैज ऑलवेज बीन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट। आर बी हॉल्डन ने प्रत्यक्षवादी अवधारणा की आलोचना करते हुए लिखा है कि इतिहास का स्वरूप कला की भांति है, इसमें वैज्ञानिक विधाओं का प्रतिरोपण एक अपवाद है। जीपी टेगार्ट ने भी प्रत्यक्षवादी अवधारणा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है तथा समसामयिक परिवर्तनों का इतिहास लेखन पर प्रभाव को स्वीकार किया है। चार्ल्स ओमन के अनुसार इतिहास विशुद्ध रूप से विषय निष्ठ नहीं है। इतिहासकार अपनी व्याख्या के माध्यम से तथ्यों का संबंध व्यवस्थित करता है। इस प्रकार अतीत तथा वर्तमान के अन्योन्याश्रित संबंध के परिवेश में ईएच कार ने कहा है कि इतिहास अतीत तथा वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद है, परिकल्पना इमेजिनेशन। प्रत्यक्षवादी तथा वैज्ञानिक विधा में अटूट आस्थावान इतिहासकारों ने इतिहास की साहित्य शैली का कठोरतम प्रहार किया है। 1939 में हिस्टोरिकल एसोसिएशन के समक्ष अपने अभिभाषण में अर्ल ऑफ क्रॉफोर्ड एवं सुंदर चित्र है जिसकी क्रॉफोर्ड एवं बालकेरीज ने कहा था कि इतिहास एक सुंदर चित्र है जिसकी शोभा किसी आकार में मड़कर नहीं बढ़ाई जा सकती, अथवा यह एक बहुमूल्य रत्न है जिसकी सुंदरता की अभिवृद्धि किसी आभूषण में जड़कर नहीं बढ़ाई जा सकती। 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अभिभाषण देते हुए प्रोफेसर जे बी व्यूरी ने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस एंड नो मोर। इससे भी अधिक जोरदार शब्दों में उन्होंने कहा था कि जब तक इतिहास को कला माना जाएगा, इसमें सत्यता तथा यथार्थता का प्रतिष्ठापन कठिन होगा। और यह स्मरण दिलाना चाहूंगा कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है। आई ए रिचर्ड्स ने अपनी रचना प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कहा है कि कला संप्रेषण प्रक्रिया का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। हेनरी पीरेन ने 1859 में अपने एक प्रकाशित लेख में लिखा है कि इतिहास प्राचीन काव्य है अथवा काव्य के रूप में हमारे स्वभाव के अनुरूप है। मानवीय स्वभाव संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति इतिहास द्वारा होती है। क्रोचे के अनुसार कला न आनंद के आदान प्रदान का साधन है और न प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, बल्कि व्यक्तिगत अंतर ज्ञानात्मक दृष्टि की अभिव्यक्ति है। कलाकार के इस विशिष्ट प्रस्तुतिकरण को सभी लोग उसी रूप में देखते हैं। कला इस प्रकार व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की प्रक्रिया नहीं अपितु किसी व्यक्ति के ज्ञान की अभिव्यक्ति है। क्रोचे के अनुसार इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य अतीतकालिक तथ्यों का कलात्मक प्रस्तुतिकरण है। इस प्रकार कला भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र नहीं अपितु संज्ञानात्मक प्रक्रिया तथ्यों का अवलोकन करता है तथा इतिहासकार एक कलाकार के रूप में अनुभव करता है। इतिहासकार तथा कलाकार में यही सामंजस्य है। इतिहास एक अत्यंत लोकप्रिय कला है। सामान्यतया के साथ साथ दोनों में अंतर भी है। कला में मात्र संभावनाओं का वर्णन होता है, इसके विपरीत इतिहास यथार्थ ऐतिहासिक तथ्यों का प्रस्तुतिकरण है। संज्ञानात्मक प्रस्तुतिकरण के आधार पर संभावना तथा यथार्थता में अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। एक कलाकार अपने विशिष्ट शिल्प से प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करके उसका प्रस्तुतिकरण करता है। उसका दायित्व प्रकृति पर नहीं अपितु कलाकार पर होता है, क्योंकि वह अपनी दृष्टि से प्रकृति का अवलोकन कर उस मनोरम दृश्य को अपनी विधा से प्रस्तुत करता है। इतिहासकार अपने अतीतकालीन स्रोतों पर आधारित घटनाओं की अनुभूति अपने मस्तिष्क में करता है। उसका प्रस्तुतिकरण मानसिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। कार्ल पियर्सन ने भी इतिहास को कला स्वीकार किया है। ज्ञान को दक्षता प्रदान करने के लिए कलात्मक शैली अपरिहार्य कलात्मक शैली की नितांत आवश्यकता होती है। इतिहासकार अपनी शैली में अतीत का परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। वह गिबन, मैकाले, कार्लाइल की साहित्यिक शैली का अनुकरण नहीं कर सकता और न उसे करना चाहिए। उसकी रचना समसामयिक समाज के लिए होती है। इतिहासकार यथार्थता के साथ विवरण संबंधी कुशलता, रोचकता, दृष्टांतों का चयन तथा चरित्र की विशेषताओं पर विशेष ध्यान देता है। इस गंभीर अर्थ में इतिहास निश्चित रूप से कला है। प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक विधियों से अतीत के यथार्थ तथ्यों का प्रस्तुतिकरण इतिहास को निरस दुरूह तथा अपठनीय बना देगा। अंग्रेजी साहित्य के प्रख्यात विद्वान सेरिडन का अभिमत है कि सरल तथा सामान्य लेखन का अभिप्राय विषय को कठिन दुरूह तथा निरस बनाना होगा। ऐतिहासिक तथ्य निरस, निर्जीव तथा अस्थि पंजर मात्र होते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कौशाम्बी, सारनाथ आदि स्थानों की खुदाई के पश्चात प्राप्त भग्नावशेष, खंडित मूर्तियां, बर्तनों के टुकड़े तथा ईंट पत्थर को यदि यथावत प्रस्तुत किया जाए तो उसमें समसामयिक समाज की क्या रुचि होगी। यह इतिहासकार की विशेषता है कि इन्हीं निर्जीव अस्थिपंजर तथ्यों के आधार पर अतीत का परिकल्पनात्मक सरस तथा रोचक प्रस्तुतिकरण समसामयिक समाज को प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप समसामयिक समाज में अतीतकालिक पूर्वजों की उपलब्धियों के ज्ञान के लिए स्वयमेव उत्कंठा जागृत हो जाती है। आधुनिक पर्यटन गाइड पर्यटकों को नगर के सुंदर भागों में परिभ्रमण कराकर उसके मस्तिष्क पर स्थान विशेष की अमिट छाप छोड़ता है। इसी प्रकार इतिहासकार भी पर्यटक गाइड की भांति समसामयिक समाज के लोगों को अपनी रचना के माध्यम से अतीतकालिक समाज के राजमहलों के जीवन से लेकर जन सामान्य की झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों, उनके सामाजिक रीति रिवाज, संस्कारों, धार्मिक वातावरण, आर्थिक जीवन का अवलोकन कराकर इतिहास अध्ययन के लिए अभिरुचि का सृजन करता है। यदि इतिहासकार ने मृत अतीत के निर्जीव तथ्यों को सरस, रोचक तथा आकर्षक बनाने की क्षमता नहीं है तो वह सफल इतिहासकार नहीं हो सकता। यह इतिहासकार की कुशलता पर निर्भर करता है कि वह पाठक को अतीतकालिक समाज में परिभ्रमण कराकर उसके मस्तिष्क को कितना प्रभावित करता है। इतिहास तथ्य एवं परिकल्पना का एक सुंदर समन्वय है। ऐतिहासिक तथ्य के प्रस्तुतिकरण में परिकल्पना का वैसा ही स्वरूप है जैसे समुद्र तट पर समुद्र के बीच सुंदर पाषाण शिला। ट्रेवेलियन ने उचित ही कहा है कि यथार्थता इतिहास अध्ययन की कसौटी है। इसकी उत्प्रेरक अभ्यर्थना काव्यात्मक है। इतिहास अतीत को वर्तमान के परिवेश में अनुभूति के लिए प्रेरित करता है। रोमांटिक युग के इतिहासकार गिबन, मैकाले, कार्लाइल तथा वाल्टर स्कॉट की रचनाएं साहित्यिक एवं काव्यात्मक है। इन इतिहासकारों की लोकप्रियता का रहस्य उनकी काव्यात्मक साहित्यिक शैली है। मैकाले ने अपने इतिहास रचना के विषय में स्वयं कहा है कि उन्हें तब तक संतोष नहीं होगा जब उनकी इतिहास रचना नव युवतियों के टेबल से नवीनतम उपन्यास को अतिक्रांत न कर सके। इतिहास लेखन संबंधी मैकाले का उच्च कोटि का आदर्श 21वीं सदी के इतिहासकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इस प्रकार परिकल्पना को इतिहास लेखन से अलग करने का अभिप्राय शरीर से हृदय को अलग कर निष्प्राण करना होगा। प्रत्यक्षवादी इतिहासकारों द्वारा अतीत का यथावत प्रस्तुतिकरण का तात्पर्य मृत अतीत का निजी एवं निष्प्राण प्रस्तुतिकरण होगा। ऐसा इतिहास समसामयिक समाज को अतीत की गवेषणा के लिए क्या रुचि सृजन कर सकता है? यदि इतिहास अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा सुखद एवं सुसंपन्न भविष्य का मार्गदर्शन होता है तो निश्चित रूप प्रत्यक्षवादी अवधारण अभिशाप स्वरूप है। इसलिए इतिहास को अंधेरी कोठरी तथा चार्ल्स ओमन के शब्दों में इतिहास को विषाक्त कहा गया है। निष्कर्ष के रूप में हमें स्वीकार करना होगा कि इतिहास को समसामयिकवाद तथा परिकल्पना के प्रभावों से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस तथ्य के स्वीकारण से इतिहास में प्रत्यक्षवाद की उपादेयता संदिग्ध हो जाती है। प्रत्यक्षवाद का संबंध मात्र यथार्थ तथ्यों के चयन तक सीमित होना चाहिए। उसके प्रस्तुतीकरण में कलात्मक तथा साहित्यिक शैली की अपरिहार्यता को सभी इतिहासकार स्वीकार करेंगे।